समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे।
कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। जी हाँ, इसीलिए संघर्ष और उदासी भरे जज्बातों को, दिनों को जिंदगी से हटाना है और एक नई सोच, एक नई ऊर्जा और एक नए एहसास के साथ जिंदगी रूपी दिन की शुरुआत करनी है। तो समाचार पत्र का कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं का स्वागत है और आज श्रोताओं का स्वागत कर रहे हैं श्रोताओं के ही अपने रवि कपूर और शगुन चोपड़ा। तो स्वीकार कीजिए हम दोनों का नमस्कार।
नमस्कार रवि, एंड विद दिस ब्यूटिफुल मेलेडी दैट इंड्यूसेस अ वंडरफुल फीलिंग ऑफ वेल बींग, आवर सिंसियर विशेस एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आर लिसनर्स हु आर ट्यून्ड टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एंड द आकाशवाणी नेटवर्क टू आर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। एंड ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर वी ब्रिंग यू द लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज। Also, we'll be providing you Metro City updates and we'll be exploring today's history, that is 15th of January, and all the information related to today. And we'll begin with the headlines first, shall we?
जी बिल्कुल शुगुन, शुरू कर लेते हैं सिलसिला मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में दो युद्धपोत INS सूरत और INS नीलगिरी तथा एक पनडुब्बी INS वागशीर का लोकार्पण करेंगे। पहली बार एक साथ तीन पोत भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किए जा रहे हैं। ये रक्षा, विनिर्माण और समुद्री सुरक्षा में वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस आयोजन के बाद श्री मोदी नवी मुंबई के खारघर में श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस्कॉन परियोजना का यह मंदिर 9 एकड़ क्षेत्र में बना है। इस परिसर में एक वैदिक शिक्षा केंद्र, प्रस्तावित संग्रहालय, सभागार और आरोग्य केंद्र है। मंदिर का मिशन वैदिक शिक्षा के माध्यम से वैश्विक भाईचारे, शांति और एकता को बढ़ावा देना है।
वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ विल अटेंड द 11th कॉन्वोकेशन सेरेमनी ऑफ गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन बिलासपुर छत्तीसगढ़ टुडे। द सेरेमनी विल बी हेल्ड फ्रॉम 3 PM टू 4 PM। State Governor Ramin Deka and Chief Minister Vishnu Deo Sai will also be present on the occasion.
सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम 5 दिन की भारत यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंचे। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। सिंगापुर के राष्ट्रपति के रूप में ये उनकी पहली भारत यात्रा है। मंत्रियों और सांसदों सहित एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी उनके साथ है। यात्रा के दौरान वे कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू उनके सम्मान में भोज का आयोजन करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी सिंगापुर के राष्ट्रपति से मिलेंगे। श्री थर्मन 17 और 18 जनवरी को ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। भारत और सिंगापुर के बीच मैत्री और परस्पर सम्मान पर आधारित भरोसेमंद सहयोग संबंध रहा है। वहां के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। राष्ट्रपति षणमुगरत्नम की यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है।
द 10th अजंता वेरूल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट्स टुडे, सेलिब्रेटिंग ग्लोबल सिनेमा एंड ऑफरिंग अ यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर फिल्म एंथुजियास्ट इन द मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र। द इवेंट विल बी इनॉग्रेटेड बाय सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग संजय जाजू। He will also confer the Padma Pani Lifetime Achievement Award on Padma Bhushan Sai Paranjape, a distinguished film personality, in recognition of her exceptional contributions to Indian cinema. Following the inauguration, the opening film Little Jaffna, a highly acclaimed French and Tamil language film, will be screened at 9 PM. The festival promises to provide an enriching cinematic experience, bringing the best films from around the world to audiences in the region.
और शगुन, अब बात कर लेते हैं मौसम की, जानकारी दे देते हैं अपने श्रोताओं को मौसम के बारे में। मौसम विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले दो दिन तक वर्षा या बर्फबारी की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के हिमालय क्षेत्र, सिक्किम और देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। अगले तीन दिन में मध्य भारत और महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने आज मछुआरों को मन्नार की घाटी और निकट के कोमोरिन क्षेत्र में नहीं जाने की सलाह दी है।
On to international news updates now. In South Africa, rescuers have pulled out 36 dead bodies and 82 survivors from an illegal gold mine during 2 days of rescue operations. Police said the rescue operations are underway as hundreds could still be underground, but the exact number is unclear. The local authorities have said all 82 survivors will be arrested under charges of illegal mining, trespassing and contravention of the Immigration Act charges. In August last year, police began a crackdown on illegal miners in the country. They laid siege to the mine and cut off food and water supplies for months in an attempt to force the miners to the surface.
प्रयागराज में दिव्य महाकुंभ का पावन स्नान पूरी आस्था और उल्लास के साथ जारी है। कल मकर संक्रांति के अमृत स्नान के अवसर पर 3.5 करोड़ से अधिक लोगों ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भाषिणी के सहयोग से महाकुंभ में बहुभाषाई सुगमता का तकनीकी प्रबंध किया है। एक रिपोर्ट।
महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों को भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म भाषिणी के जरिए 11 विभिन्न भाषाओं की सुविधा उपलब्ध हो रही है। इस प्लेटफॉर्म के डिजिटल खोया पाया समाधान के जरिए लोग अपनी भाषाओं में खोई या पाई गई वस्तुओं का विवरण दर्ज कर रहे हैं, तो वहीं आसान संवाद के लिए वास्तविक समय में दर्ज की गई विवरण का अनुवाद भी हो रहा है। इसके जरिए अधिकारियों के साथ निर्बाध संवाद भी स्थापित हो रहा है। AI संचालित बहुभाषी चैटबोट कुंभ सहायक को महाकुंभ के दौरान लाखों आगंतुकों की सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। कुंभ सहायक का उद्देश्य तीर्थयात्रियों को मार्गों की सही जानकारी प्रदान करने के साथ साथ महाकुंभ 2025 के अनुभव को भी बेहतर बनाना है। भाषणी मोबाइल ऐप की वार्तालाप सुविधा के जरिए श्रद्धालुओं को इस बड़े आयोजन में उत्तर प्रदेश पुलिस की 112 आपातकालीन हेल्पलाइन के साथ सहज संचार की सुविधा भी मिल रही है। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, महाकुंभ नगर।
तो ये थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार। और अब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचारों की जानकारी दे रही हैं शगुन चोपड़ा।
यस रवि, वी विल बिगिन विद चेन्नई फर्स्ट। Union Commerce Minister and senior BJP leader Piyush Goyal has said that the good governance for the past 10 years has been based on 10 foundational principles. Delivering the keynote address at an event in Chennai, he said that the government led by Prime Minister Narendra Modi functions under a decisive leadership, root cause analysis, outcome-oriented action, rule of law and transparency, time-bound execution, prioritization of issues, accountability and monitoring, adoption of technology, innovative financing and partnership with all stakeholders. He said that the 27-foot statue of Nataraj at the Bharat Mandapam in New Delhi showcased Tamil Nadu's rich cultural heritage. Staying with Chennai, the Chennai Sangamam Art Festival began across 18 locations of Chennai with reverberating sounds of drums and dholaks. More than 1,500 artists are showcasing their talents every evening from 5 p.m. to 9 p.m. in the 5-day event. Over 50 traditional folk art forms will be featured, with the art forms of traditional dances creating a colourful feast to the eyes and make the engrossed audience dance to their tunes. Now we'll focus on Bengaluru. The Maratha Light Infantry Regimental Centre at Belagavi in Karnataka observed the 9th Veterans Day yesterday, paying homage to the valorous men and women who served the nation with unwavering dedication. The wreath-laying ceremony was held at Sharkat War Memorial and a silent tribute was paid to the brave hearts who fought valiantly to defend our motherland. The serving personnel interacted with the veterans, thereby bridging the gap between the past and present. The legacy of the veterans was remembered, and the valor of our men in uniform inspiring the young generation was acknowledged on this occasion. The Veterans' Day is observed every year to mark respect to Field Marshal K.M. Kariappa, who took over as the country's first Commander-in-Chief of the Indian Army from the British officers in 1953. Now, we'll focus on Hyderabad Metro. In Telangana, people are celebrating Kanuma, the festival of cattle, today on the third day of Sankranti festival. Especially in rural areas, people worship cattle and agricultural tools on the occasion. Rural craftsmen and artisans who help farmers in their daily chores are specially honored. Our correspondent says cattle processions will be held at many places as farmers showcase their bulls and adorned cattle in their village streets. Cattle competitions and rural sports for youth will be held to mark the festival. The cattle will be worshipped in most of the rural areas as the farming community consider the importance of the cattle in the nourishment and development of the society. So these were the updates from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. And now Ravi will be sharing the updates from Delhi, Mumbai and Kolkata. Over to you.
Bilkul Shagun, aur aapka bahut bahut dhanyawad. शुरुआत दिल्ली से करते हैं. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कल वसंत कुंज स्थित लीवर और पित्त विज्ञान संस्थान के 15वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया. इस दौरान श्री सक्सेना ने संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट भी जारी की. दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने कल वोटर बीट्स 2025 संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया. इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती आर एलिस वाज ने कहा कि युवा मतदाता लोकतंत्र के भविष्य को आकार देते हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से आयोग युवाओं को चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करता है. दिल्ली पुलिस ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने के मामले में 155 मामले दर्ज किए हैं. दिल्ली में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने राजधानी के विभिन्न जिलों में छापेमारी की. इसमें 16,000 लीटर से अधिक शराब, 12 करोड़ रुपए से अधिक के मादक पदार्थ, 1 करोड़ से अधिक की नकद राशि और 37 किलो चांदी जब्त की. पुलिस ने बताया कि निवार कार्रवाई और आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत 6,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है. दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की फ्लशिंग के वार्षिक कार्यक्रम के कारण आज आदर्श नगर, मॉडल टाउन, आरपी बाग, संगम पार्क, मलिकपुर गांव, प्रेम कुंज और आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी. जल बोर्ड ने लोगों से पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने की अपील की है. लोग पानी के टैंकर के लिए जल बोर्ड को इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, 1916-0112-6185-78, 0112-6192-44. आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मुंबई की ओर. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कल मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2025 का उद्घाटन करेंगे. महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम में केवल स्टार्टअप इकोसिस्टम में महाराष्ट्र की उपलब्धियों का स्मरण होगा, बल्कि भविष्य के सहयोग और नवाचारों के लिए मंच भी तैयार किया जाएगा. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल कहा कि पानीपत की लड़ाई के दौरान मराठा सैनिकों द्वारा दिया गया बलिदान युवाओं को प्रेरित करता है और सभी चुनौतियों से ऊपर उठने के लिए एकता के महत्व की वकालत करता है. हरियाणा के पानीपत में 264वें शौर्य दिवस समारोह में बोलते हुए श्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार पानीपत युद्ध स्मारक के जीर्णोद्वार का समर्थन करेगी और छत्रपति शिवाजी महाराज की एक भव्य प्रतिमा भी स्थापित करेगी जो वीरता और एकता के प्रतीक के रूप में खड़ी है. आईआईटी बॉम्बे ने अपने एडटेक पार्टनर ग्रेट लर्निंग के साथ ई मोबिलिटी में ई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स की घोषणा की है. 18 महीने का उद्योग केंद्रित कोर्स मार्च 2025 से शुरू होगा. आईआईटी बॉम्बे के निदेशक प्रोफेसर शिरीष केदारे के अनुसार C1973 ईवी पावर ट्रेन लैब द्वारा यह कोर्स शुरुआती और मध्य करियर के पेशेवरों के लिए तैयार किया गया है. तो ये थे एक कोलकाता का समाचार और है
शगुन।
सागर मेला में पुण्य स्नान बुधवार सुबह 6:58 तक जारी रहा, यानी कि आज सुबह 6:58 तक जारी रहा, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु घाटों पर जमा हुए और उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और अन्य राज्यों तथा पश्चिम बंगाल से लोग सागर मेला परिसर में वैसे अभी भी एकत्र हो रहे हैं। तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार।
Now let's focus on the world of sports.
जी.
In the Hockey India League 2024-25 match, Team Gonaseka secured their second win and kept their semi-final hopes alive after beating Surma Hockey Club 2-1 at the Birsa Munda Hockey Stadium in Rourkela today. Neelam Sanjeev and Lee Morton scored the goals for Team Gonaseka, while Pawan Rajbhar scored Surma Hockey Club's solitary goal. A detailed report on yesterday's match from our correspondent. Listen in.
Surma Hockey Club badly missed the services of iconic captain Harmanpreet Singh yesterday in their Hockey India League encounter at Rourkela against Gonaseka, going down 2-1 in a battle of attrition. A win would have propelled Surma all the way up to second in the men's HIA league table, but missing star defender and ace track flicker Harmanpreet did upset their team composition, which Gonaseka took full advantage of. Neelam Sanjeev opened the scoring for them with some fine stick work inside the D when his low pass was deflected into his own net by a defender in the 33rd minute after the match began in a relatively cagey manner. The game remained evenly poised until Pawan Rajbhar scored a clever equaliser with a deflection from a quickly taken free hit 4 minutes into the third quarter. Both teams mounted attacks for the winner as the game hurtled towards the finish. However, it was Morton who got the crucial strike with a reverse hit just 2 minutes from time.
Afsar unki virodhi team ke paas hai aur goal bhi team Gonaseka ke paas hai.
Mandeep in midfield had a strong game for Gonaseka and was named the player of the match. On the pious occasion of Makar Sankranti, the festival of hockey also continued in the Women's League back in Ranchi as the Shachi Rar Bengal Tigers took on the Delhi Pipers in a cautious game in which both sides secured their defence before venturing forward. Irish star Catherine Mullen scored the only goal of the game, a fine chip over keeper Elodie Picard that came from a counter-attack. Thereafter, the Pipers launched attack after attack, but the resolute Bengal defence held firm for a crucial victory. Today, men's action resumes with a match between UP Rudras and Shrachi Rar Bengal Tigers, while in the women's league, Odisha Warriors will face the Surma Hockey Club. This is Sharia Chaudhary reporting for Akashvani News.
और शगुन अब खो खो खेल की बात कर लेते हैं।
डेफिनेटली
खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने उल्लेखनीय जीत के साथ दूसरे दिन का समापन शानदार ढंग से किया। भारतीय पुरुष टीम ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ब्राजील को 64-34 के स्कोर से हराया। वहीं भारतीय महिला टीम ने दक्षिण कोरिया की टीम को 175-18 से बड़ी मात दी। पेश है एक रिपोर्ट।
खोखो विश्व कप में रोमांचक खेल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय पुरुष टीम ने ब्राजील पर 64-34 से जीत हासिल की। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेले गए इस मैच में जीत के साथ भारत नॉकआउट के करीब पहुंच गया है। इससे पहले भारतीय महिला खोखो टीम ने अपने टूर्नामेंट के पहले मैच में दक्षिण कोरिया पर 175-18 से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ब्राजील ने भारत के खिलाफ अटैक की शुरुआत करते हुए 16 अंक हासिल किए, लेकिन टीम इंडिया ने शानदार वापसी की। टर्न टू में भारत का खेल प्रभावशाली रहा, लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि वे जीत की ओर बढ़ रहे हैं, तब ब्राजील ने टर्न थ्री में वापसी की। ब्राजील ने टर्न थ्री में भारत पर दबाव बनाया, टीम ने कड़ी मेहनत की और अंत में वापसी कर भारत ने टूर्नामेंट के दूसरे दिन शानदार जीत दर्ज की। मुकाबले में भारत के कप्तान प्रतीक वाइकर को बेस्ट प्लेयर और पाबरी सबर को बेस्ट अटैकर चुना गया, जबकि ब्राजील के मैथ्यूस कोस्टा के पाले में बेस्ट डिफेंडर का पुरस्कार गया। वहीं दूसरी ओर भारतीय महिला खोखो टीम ने अपने टूर्नामेंट के पहले मैच में दक्षिण कोरिया पर 175-18 से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। कप्तान प्रियंका इंगले की अगुवाई में टीम शुरुआत से ही लय में दिखी। चारों टर्न में भारतीय महिला टीम का दबदबा बना रहा और दक्षिण कोरिया मैच में वापसी नहीं कर पाई। मैच में भारत की नशरीन शेख को बेस्ट प्लेयर चुना गया, जबकि निर्मला भाटी बेस्ट अटैकर रही और दक्षिण कोरिया के एस्तर किम ने बेस्ट डिफेंडर का खिताब जीता। आज सवेरे के लिए अभिषेक कपिल।
और शगुन अब जानकारी दे देते हैं अपने श्रोताओं को महिला क्रिकेट के बारे में।
जी,
महिला क्रिकेट में भारत और आयरलैंड के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का फाइनल और अंतिम मैच आज गुजरात के राजकोट में खेला जाएगा। मैच सुबह 11 बजे शुरू होगा। शुरूआती 2 मैच जीतकर भारत पहले ही श्रृंखला पर कब्जा कर चुका है। भारत ने पहला मैच 6 विकेट से जीता था। दूसरे मैच में भारतीय टीम ने 5 विकेट पर 370 रन बनाकर एक दिवसीय मैचों में अब तक का अपना सर्वाधिक स्कोर बनाया। जवाब में आयरलैंड की टीम 7 विकेट पर 254 रन पर सिमट गई।
Now, Ravi, we have the updates for our listeners from the Indian Super League football.
Jee.
The Mohammedan SC is set to take on Chennai FC at the Kishore Bharati Krirangan in Kolkata today. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. IST. Mohammedan intends to clinch back-to-back victories for the first time this season, and Chennai aims to break away their losing streak while improving their overall performance. In ISL rankings, Mohammedan SC holds 12th place with 10 points in 15 matches, while Chennai FC sits 10th with 16 points. So these are the updates from the world of sports.
आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और शगुन के साथ। और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की, तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मौसम। तो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे तथा हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है, और इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। वैसे शगुन, आज जब मैं आ रहा था तो एक बार फिर से हमेशा की तरह मुझे बहुत कोहरा मिला था रास्ते में, और ड्राइव करते हुए बहुत ही मुश्किल आ रही थी।
द विजिबिलिटी वॉज आई थिंक काइंड ऑफ जीरो ओनली बिकॉज नथिंग वॉज विजिबल एट अ वेरी ब्रीफ डिस्टेंस एज वेल।
जी, लेकिन मतलब संतोषजनक बात यह है कि फाइनली हम आकाशवाणी पहुंच गए, स्टूडियो पहुंच गए और अपने श्रोताओं के साथ इस समय हम बातें कर रहे हैं।
यस, एंड वी आर प्रेजेंटिंग अ प्रोग्राम टू देम।
जी, तो दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में सुबह के समय कोहरा और धुंध छाई रहेगी। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और कोलकाता की अगर बात करें तो वहां सुबह के समय आसमान साफ होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 24 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 29 डिग्रीज। Now talking about Bengaluru, it is expected to have mainly clear sky. The minimum temperature was 19 degrees Celsius and maximum will be around 28 degrees. Hyderabad is expected to have fog or mist, just like kind of like Delhi, would occur in the early morning only. The temperature will hover between a minimum of 19 degrees and a maximum of 28 degrees Celsius.
और अब बारी है इतिहास के पन्नों को पलटने की, तो जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ, लेकिन उससे पहले अपने श्रोताओं को शगुन कुछ जानकारी देना चाह रही हैं।
Yes, today is the Indian Army Day, which shines light on the bravery and relentless determination that our armed forces portray each day.
जी, और अब बारी है इतिहास के पन्नों को पलटने की, तो जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ।
एंड ऑल्सो रवि, वाइल वी आर फोकसिंग ऑन द आर्मी डे, दिस इवेंट एज इट प्रमोट्स अ स्ट्रांग सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म बाय ऑनरिंग द वैलर एंड सैक्रिफाइसेस मेड बाय द वॉरियर्स हु डिवोटेड देयर लाइफ टू द कंट्री।
जी, चलिए अब जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ था।
रवि, लेट्स टेक आवर लिसनर्स वे बैक इन टाइम। इन द ईयर 1653 छत्रपति शिवाजी कॉन्कर जावाली स्टेट।
1759 में आज ही के दिन लंदन स्थित मॉन्टेगुए हाउस में ब्रिटिश संग्रहालय की स्थापना हुई थी।
इन द ईयर 1784 सर विलियम जोन्स जज एंड लिंग्विस्ट एंड सर वॉरेन हेस्टिंग्स एस्टैब्लिश्ड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एट कलकत्ता एंड दिस वॉज द फर्स्ट स्कॉलास्टिक इंस्टीट्यूशन। Now talking about the year 1958, Tamil became the official language of Madras.
1965 में आज के दिन भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी, और 1965 में ही आज के दिन 1949 में के एम करियप्पा भारतीय थलसेना के पहले कमांडर इन चीफ बने। तब से 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है।
In the year 1996, the restoration of the original name of the city as Mumbai for Bombay Wide Maharashtra Act in the year 1996 that I'm talking about.
1999 में आज ही के दिन एनी फ्रैंक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम विश्व नेता संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान बने और 2008 में आज ही के दिन खगोलविदों ने धरती से 25 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर की आकाशगंगा के जीवन के लिए जरूरी तत्व खोजने का दावा किया। और अब समय हो गया है कुछ महानुभावों की पुण्यतिथियों, जयंतियों या जन्मदिन के बारे में अपने श्रोताओं को जानकारी देने का। तो इस क्रम में आज सबसे पहला जो नाम है वो है सदाशिव राव भाऊ का, जो पेशवा बालाजी के चचेरे भाई थे और वे शासन प्रबंध में बहुत ही कुशल थे और मराठा साम्राज्य का समस्त शासनभार पेशवा ने उन्हीं पर छोड़ दिया था। सदाशिव राव भाऊ शासन प्रबंध में जैसा कि बताया बहुत ही कुशल थे और उन्होंने मराठा साम्राज्य का समस्त शासनभार पेशवा ने उन्हीं पर छोड़ दिया था।
जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेमंड वॉलेस, एक्टर, डांसर, सिंगर एंड ऑल्सो स्टेज परफॉर्मर, पर्टिकुलरली फॉर म्यूजिकल थिएटर। ही स्टार्टेड हिज मूवी करियर इन द साइलेंट फिल्म एरा। He was a major Broadway performer in the 1930s and beyond. He is best known for his roles in The Wizard of Oz as the Scarecrow. And for you listeners, we have this dialogue come a song from him.
Slap in my face. Oh, I'm a failure because I haven't got a brain.
Well, what would you do with a brain if you had one?
Do? Why, if I had a brain, I could while away the hours, conferring with the flowers, consulting with the rain. And my head, I'd be scratching while my thoughts were busy hatching if I only had a brain. I'd unravel every riddle for any individual.
और अब बात कर लेते हैं बांग्ला और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध निर्देशक तपन सिन्हा के बारे में, जिनका निधन हुआ था 15 जनवरी 2009 में। इन्हें 2006 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला था। तपन सिन्हा की फिल्में भारत के अलावा बर्लिन, वेनिस, लंदन, मॉस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी सराही गईं और उनकी निर्मित कुछ प्रमुख फिल्मों के नाम हैं अंकुश, उपहार, काबुलीवाला, जिंदगी जिंदगी, सफेद हाथी आदि। और इसके अलावा बांग्ला फिल्में तो उन्होंने बनाई ही थी।
Well, today we are also remembering Namdeo Lakshman Thassal, the writer. He was awarded the Padma Shri in the year 1999 and a Lifetime Achievement Award from the Sahitya Academy in the year 2004.
और अब बात कर लेते हैं पंजाबी भाषा के लोक और पॉप संगीत से जुड़े प्रसिद्ध गायक और अभिनेता रहे सरदूल सिकंदर की, जिनका जन्म तो हुआ था 15 जनवरी 1961 में, लेकिन इन्होंने इस दुनिया से विदा ली 24 फरवरी 2021 में। सन 1980 के दशक में सरदूल सिकंदर ने अपनी पहली एल्बम रोड वेज दी लॉरी निकाली थी और इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
तस्वीर मोड़ दितिया कागजात बचिया लकीर मोड़ दितिया
Well, today also we are remembering Harry Nilsson, singer-songwriter who reached the peak of his success in the early 1970s. Nilsson was one of the few major pop rock recording artists to achieve significant commercial success.
और कार्यक्रम के अंतिम चरण में जन्मदिन की बधाई दे देते हैं नील नितिन मुकेश चंद माथुर को, जो एक भारतीय अभिनेता हैं। आपका जन्म हुआ था 15 जनवरी 1982 को, तो जन्मदिन की ढेर सारी बधाई नील नितिन मुकेश को। चलते चलते आज का विचार कि पीपल के पत्तों जैसा ना बने जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं, बनना है तो मेहंदी के पत्तों जैसा बने जो खुद पिसकर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर जाते हैं। इसी विचार के साथ इजाजत दीजिए रवि कपूर और शगुन चोपड़ा को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की।
Well, listeners, stay tuned for coming up next, Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 p.m. Thank you so much, listeners, for tuning in.
Namaskar.